लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। निर्दोष की धार्मिकता उसका पथ प्रदर्शित करती है, किंतु दुष्ट की दुष्टता उसका विनाश करती है। निष्कपट की धार्मिकता उसे बचाती है, किंतु कपटी अपनी वासना के जाल में फंस जाता है। मरने पर दुष्ट की आशा मर जाती है और उसकी संपत्ति पर उसका भरोसा भी मर जाता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 5 से लेकर 7 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। श्रोताओं, ईश्वर में विश्वास व्यक्ति को धार्मिक अथवा धर्म परायण बना देता है, और ऐसा ही व्यक्ति बुराई और पाप से दूर रहने का प्रयास करता है। वह सीधे पथ पर चलता है, क्योंकि धार्मिकता भले और बुरे के बीच अंतर का ज्ञान कराकर उसका मार्गदर्शन करती है। इसके विपरीत दुष्ट व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है। वह ईश्वर में विश्वास के मूल्य को नहीं जानता और अपनी ही दुष्टता में विनाश के गर्त में गिरता है। 7वें पद में उपदेशक कहता है, मरने पर दुष्ट की आशा मर जाती है और संपत्ति पर उसका भरोसा भी मर जाता है। श्रोताओं, जिन लोगों में आशा की कमी होती है, वे बुराई में आसानी से फंस जाते हैं। वे केवल सांसारिक धन संपन्नता की खोज में लगे रहते हैं और अन्यों को अपने से नीचा दिखाने में अपना जीवन गंवा देते हैं, और इसी कारण ईश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। उनकी संपत्ति तब तक काम की होती है जब तक वे स्वस्थ रहते हैं, किंतु बीमार होने पर, वृद्ध होने पर उनकी धन दौलत भी उनका साथ छोड़ देती है और अंततः असंतुष्टि की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके विपरीत धर्मपरायण व्यक्ति का विश्वास उसकी रक्षा करता और उसे अनंत जीवन की आशा तक ले जाता है। यीशु ख्रीस्त में विश्वास करने वालों को आश्वासन देते हुए संत पॉल इब्रानियों को प्रेषित पत्र में लिखते हैं, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। सार यही कि बुराई में लगे लोग अन्यायपूर्ण काम करते हैं और इसीलिए उनकी आशा व्यर्थ हो जाती है। उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी मनोकामनाएं केवल कामनाएं बनकर रह जाती हैं, जो कभी पूरी नहीं होती, और वे हताशा और निराशा से घिर जाते हैं। उनके मरने के साथ ही उनकी आशाएं भी मर जाती हैं। वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ का लेखक एक और तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है, और वह यह कि आशा केवल भले लोगों के लिए होती है। वे ही विश्वास के आधार पर अनंत जीवन में आशा कर पाते हैं, जबकि दुष्टों में आशा का कोई कारण नहीं होता, फिर भी वे अनर्थ और बेकार की चीजों में आशा करते हैं। वे आशा करते हैं कि सब खतरों से वे बचे रहें, सब बीमारियों से बचे रहें, जो उनके वश में कदापि नहीं होता और वे विनाश की ओर बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत धर्म परायण और भले लोगों की आशा उन्हें इस जीवन में आंतरिक सुख और संतोष का अनुभव कराती तथा उनमें अनंत जीवन की आशा को मजबूत करती है। आगे 11वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों में सूक्ति ग्रंथ का रचयिता कहता है, धर्मी संकट से मुक्त है, वह विधर्मी के सिर पर पड़ता है। विधर्मी अपनी बातों से अपने पड़ोसी का विनाश करता है, किंतु धर्मी अपने ज्ञान द्वारा बच जाते हैं। धर्मियों की उन्नति पर नगर आनंद मनाता है, किंतु दुष्टों के विनाश पर लोग जय जयकार करते हैं। धर्मियों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है, किंतु दुष्टों के दुर्वचनों से वह नष्ट हो जाता है। लेखक यही कहना चाहता है कि धर्मी व्यक्ति अपने विश्वास के कारण और अपने भले कर्मों के कारण ईश्वर की प्रतिज्ञा को कभी नहीं भुलाते। उनमें यह अनुभूति प्रबल होती है कि ईश्वर हर कठिनाई में उनके साथ होंगे तथा दुख कष्टों को सहन करने की शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। यही कारण है कि इस जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उसे वे जीवन की चुनौती मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और जानते हैं कि परेशानियां अस्थाई हैं, वे हमेशा नहीं बनी रहेंगी। उनका विश्वास उन्हें यह ज्ञान कराता है कि इस जीवन और भावी जीवन में भी प्रभु ईश्वर ही उनका उद्धार करेंगे और उन्हें सुख शांति का अनुभव कराएंगे। एक बात ध्यान देने योग्य यह कि भले व्यक्ति इसी जीवन में कठिनाइयों का अनुभव कर लेते हैं, जबकि दुष्ट यह तक नहीं जानते कि भावी जीवन में उन पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि अब तक उन्होंने दुख और कठिनाइयों का अर्थ ही नहीं समझा था। बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इसराइली तो लाल सागर के संकट से छुड़ाए गए थे, परंतु मिस्री उसमें डूब गए थे। इसी प्रकार प्रेरितवर पेत्रुस को बेड़ियों से छुड़ाकर मौत के मुख से बचा लिया गया था, जबकि उन्हें सताने वाले कारावास के जल्लादों को दंडित किया गया था। फिर लेखक कहता है, विधर्मी अपनी बातों से पड़ोसी का विनाश करता है, किंतु धर्मी अपने ज्ञान द्वारा बच जाते हैं। श्रोताओं, पाखंडियों की एक पहचान यह भी है कि वे अपनी बातों से लोगों को तबाह कर देते हैं, जबकि सच्चा प्यार दूसरों का निर्माण करना चाहता है। वह उनके विनाश की बात नहीं सोचता, बल्कि भलाई की बात सोचता है। वह उनके कल्याण की बात सोचता है। क्या शुभ है, क्या सुंदर है, बस उसी में उसका मन लगा रहता है। बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित एस्तर के ग्रंथ के तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वफादारी के ढोंग के तहत हमान ने एक पूरे देश को नष्ट करने की कोशिश की थी। और इसी प्रकार समुएल के दूसरे ग्रंथ के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसी झूठे आवरण के नीचे जीबा ने अपने पड़ोसी को नष्ट करने की कोशिश की थी। श्रोताओ, पाखंडी की जीभ तलवार से भी अधिक घातक होती है। पाखंडी दया और सद्भावना के बहाने से अपने पड़ोसी के विनाश में लगता है। वह शरारती तरीकों से पड़ोसी को लुभाता और पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। इसीलिए कहा जाता है कि चापलूसी करने वाली जीभ से अधिक घातक तलवार भी नहीं होती। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, किंतु पाखंडी और दुष्ट अपनी जीभ से अन्यों की मौत का कारण बनता है। दूसरी ओर ईमानदारी दुष्ट की कुयोजनाओं को नष्ट करने में सफल सिद्ध होती है। शैतान की युक्तियों के ज्ञान के माध्यम से धर्मी उन फंदों से बच निकलता है जो पाखंडी ने उसके लिए बिछा रखे हैं। अपने हृदय में निहित ईश प्रज्ञा और विवेक के बल पर भले व्यक्ति धोखाधड़ी और छलपूर्ण योजनाओं से बच जाते हैं। रोमियो को प्रेषित पत्र के 16वें अध्याय के 17 से लेकर 20 तक के पदों में संत पॉल भाइयों को परामर्श देते हैं। आप उन लोगों से सावधान रहें जो फूट डालते हैं तथा दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। इस प्रकार का व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता जो आपको मिली है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें। वे हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं। वे चिकनी चुपड़ी और खुशामद भरी बातों से भोले लोगों को भुलावे में डालते हैं। फिर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप भलाई में निपुण और बुराई के विषय में अनजान रहें। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वस्तुतः सूक्त ग्रंथ के पाठकों को यही परामर्श दिया गया है कि वे सदैव भला सोचें और भला करें, क्योंकि ऐसा कर ही वे अपने जीवन को शुद्ध रख सकेंगे तथा ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह उन पर सदैव बना रहेगा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पाप फ्रांसिस ने पौत्र आत्मा के कार्यों की याद दिलाते हुए उनसे कृपा की याचना करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 9 जून के ट्वीट संदेश में लिखा, पौत्र आत्मा हमें ईश्वर की उपस्थिति एवं उनके कार्यों को छोटी चीजों में परखने की शक्ति प्रदान करते हैं, बाह्य प्रदर्शन या शक्ति में नहीं बल्कि दीनता एवं दुर्बलता में। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 9 जून को सिसली के धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों से मुलाकात की तथा उन्हें बदलते युग की याद दिलाते हुए साहसपूर्ण चुनाव करने का प्रोत्साहन दिया। उन्हें संबोधित कर संत पापा ने कहा, युग परिवर्तन जिसमें हम जी रहे हैं साहसपूर्ण चुनाव की मांग करता है जो पौत्र आत्मा की प्रेरणा से आलोकित हो। यह बदलाव समाज में और खासकर भावनात्मक संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहा है, जिसको महामारी ने अधिक स्पष्ट किया है, जिसे हमें जिम्मेदारी की भावना के साथ जीना और जागरूकता के साथ स्वीकार करना है। संत पापा ने कहा कि सिसली भी इस परिवर्तन से बाहर नहीं है जैसा कि अतीत में हो चुका है। यह ऐतिहासिक रास्तों के केंद्र में है जिसको महाद्वीप के लोगों ने बनाया है। इसने हर प्रकार के लोगों का स्वागत किया है और उन्हें इसके निर्माण में एकीकृत करते हुए अपनी संस्कृति का गठन किया है। संत पापा ने कहा, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि यह एक खुशहाल द्वीप है, क्योंकि संकीर्णता की स्थिति जो लोगों के अंदर है सिसली समाज को गहराई से प्रभावित करती है। यही कारण है कि सिसली में सद्गुणों के साथ साथ क्रूरता भी दिखाई देती है। संत पापा ने कहा कि यह समझना आवश्यक है कि सिसली युग के परिवर्तन का अनुभव कैसे और किस दिशा में कर रहा है और इस परिवर्तन के तोड़ों और जोड़ों में ख्रिस्त के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए वह कौन सा रास्ता अपना सकता है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी पूरी ईश प्रजा को सौंपी गई है जो हम पुरोहितों एवं धर्माध्यक्षों के पूर्ण समर्पण और विशेष सेवा की मांग करता है। इस बड़ी चुनौती के सामने कलीसिया भी इसके भार एवं मोर से प्रभावित है। परिणाम स्वरूप पुरोहिताय जीवन एवं समर्पित जीवन की बुलाहटों में कमी हो रही है और इससे भी बढ़कर युवाओं का कलीसिया के प्रति अनासक्ति बढ़ रही है। विश्व महासागर दिवस पर 8 जून को विज्ञान के लिए परमधम पीठ अकादमी ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें विश्वभर के विशेषज्ञों ने भाग लेकर विचारों एवं समाधानों का आदान प्रदान किया कि विश्व के महासागरों को किस तरह बचाया जाए जो मानव की जीविका एवं अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है विश्व भर के नागरिकों में सागरों की सुरक्षा के महत्व पर चेतना जागृत करना। इस अवसर पर समुद्रों और महासागरों के स्वास्थ्य एवं मानवता के वर्तमान और भविष्य में उनकी भूमिका पर कई विशेषज्ञों ने वैटिकन में एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन विज्ञान के लिए गठित परमधम्मपीठ अकादमी ने किया था। सभा का उद्देश्य था महासागरों के बचाव हेतु विचारों एवं संभावित समाधानों को साझा करना, साथ ही सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक को योगदान देना। विज्ञान के लिए गठित परमधम्मपीठ अकादमी ने चेतावनी दी है कि हम हमारे जीवन की गुणवत्ता पर संभावित प्रभावों के लिए मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व अवधि में जी रहे हैं। अकादमी ने कहा कि महासागरों एवं सागरों में मानव का प्रभाव आज हमेशा से कहीं अधिक महसूस की जा रही है और यह बढ़ती जाएगी जब लोगों की आबादी इस शताब्दी के अंत में 11 बिलियन हो जाएगी। यही कारण है कि उन योजनाओं एवं टिकाऊ अभ्यासों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए जिससे कि वैश्विक स्वास्थ्य, ग्रह के पोषण, नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और खनिज संसाधनों की गारंटी दी जा सके जिसको महासागर प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासागर विज्ञान की वाहनीयता के दशक की शुरुआत 2021 में हुई और इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची 2030 के लक्ष्य तक पहुंचना, जो संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी से प्रेरित है एवं 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन के समझौतों में विश्व के नेताओं द्वारा उल्लेखित है। वैटिकन में एक दिवसीय सभा ने महासागरों एवं सागरों की स्थिति पर गौर किया तथा वे किस तरह मानव को संभालते और भविष्य में भी संभालेंगे, किस तरह इसे बचाया जा सकता है, किस तरह वैज्ञानिक समुदाय एवं वैश्विक संस्थान सभी की भलाई के लिए एक साथ काम किया जा सकता है, इस पर चिंतन किया। कैथोलिक संस्थाओं का एक दल मुफ्त ऑनलाइन कोर्स देने की तैयारी कर रहा है ताकि कलीसिया में आत्मपरक एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जा सके, जो सिनोडालिटी पर धर्माध्यक्ष धर्म सभा का हिस्सा है। विश्व भर के कैथोलिक इस ऑनलाइन कोर्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जिसकी विषय वस्तु होगी कलीसिया में आम आत्मपरक और निर्णय लेना। यह पहल सिनोडालिटी पर सिनट के हिस्से के रूप में किया गया है जो इस समय धर्म प्रांत स्तर पर जारी है और इसका समापन रोम में अक्टूबर 2023 को धर्माध्यक्षों की सभा के साथ होगा। कोर्स उन सभी लोगों के लिए खुला है जिसमें भाग लेना चाहते हैं और इसकी शुरुआत जुलाई में 3 सप्ताह के कोर्स के साथ होगी, जिसकी उम्मीद है कि करीब 1 लाख लोगों को सिनोडालिटी के ईश शास्त्र एवं अभ्यास का प्रशिक्षण प्रदान करना। कोर्स बोस्टन कॉलेज के स्कूल ऑफ थियोलॉजी एंड मिनिस्ट्री के ऑनलाइन प्रशिक्षण द्वारा जारी किया जाएगा। इसका आयोजन लातिनी अमेरिका, यूरोप और एशिया के धर्मदर्शों के सम्मेलनों एवं लातिनी अमेरिका के येसु समाजों एवं विभिन्न धर्म समाजों के परमाधिकारियों के तत्वाधान में किया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिनोडालिटी पर सिनट कलीसियाई जीवन में एक नया चरण प्रस्तुत करता है जो हमें बदलाव एवं सुधार की प्रक्रिया उत्पन्न करने का निमंत्रण दे रहा है ताकि इस तीसरी सहस्राब्दी के लिए एक सिनोडल कलीसिया का निर्माण किया जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने ऑर्डर ऑफ माल्टा के फ्रा मार्को लुजागो के निधन पर ऑर्डर ऑफ माल्टा के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन द्वारा संत पापा की ओर से प्रेषितता संदेश में उन्होंने ऑर्डर के सदस्यों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। ऑर्डर ऑफ माल्टा के लिए पोप के प्रतिनिधि कार्डिनल सिल्वानो मरिया थोमासो को प्रसिद्धता संदेश में संत पापा ने फ्रा मार्को लुजागो के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संदेश में लिखा है, मैं उनके परिवार एवं ऑर्डर के सभी सदस्यों के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, उनके समर्पण की याद करता हूँ जिसको उन्होंने एक चमकदार ख्रिस्तीय साक्ष्य के रूप में संस्था के माध्यम से उदार सेवा तथा कलीसिया के प्रेम के द्वारा दिया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।